संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में त्रिवर्धमान महान जिन विचरे। संसार परमागम का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार चल रहा है, उसमें सुख परमाधिकार की 85वीं गाथा चल रही है। 85वीं गाथा की गुरुदेव श्री ने जो किया है वो लगभग पूरा हो गया था, और उसके बाद पर उसके जो कमेंट्स हैं वो चल रहे थे। देखो, इसके बाद यहां इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य अमृतचंद्र का के दो कलश दिए हैं। वो जो 16 गाथाएं हैं बंधाधिकार की, उनसे ही संबंधित ये कलश हैं, और इन कलशों में, दो कलशों में वो 16 गाथाओं का सार समेत लिया गया है। यद्यपि अपना ये बहुत चर्चित विषय है और कई दफे इस पर हो चुके हैं व्याख्यान, बीच बीच में भी चर्चा आती ही रहती है, फिर भी ये जो करुणा वाला मामला है इसमें अच्छों का दिमाग थोड़ा सा अस्थिर होता है, उनको भी विकल्प खड़े होते हैं। वो इसलिए खड़े होते हैं, होना भी चाहिए कि उनको यदि वे स्वीकृत हो जाती है और उसको प्रतिपादन करने का भी भाव आता है, प्रतिपादन करना माने कोई सभा में ही प्रतिपादन करने की बात नहीं है, अपने दोस्त से भी उसको भी समझाना, अपनी पत्नी को भी समझाना, अपने घर में भी समझाना, माने प्रतिपादन कहीं हर जगह एक ही होगा ना, भाषण अलग टाइप का हो जाएगा लेकिन बात तो वो एक ही है ना, वो क्लियर हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी तो हम उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। कर सकेंगे नहीं, करेंगे। जब हमारी श्रद्धा डगमगाएगी तो हम क्यों करेंगे, फिर हमारी वो विषय नहीं हो जाएगा, तो विषय गायब हो जाएगा। इस आधार पर, इसलिए वो आधारित है इन कलशों पर, कि इनमें ये बताया है कि हम दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते, मार जला नहीं सकते हैं। जब हम सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं और मार जला नहीं सकते हैं तो फिर ऐसी मान्यता होना तो इस दृष्टि से भी मिथ्यात्व है ना। ये मान्यता स्वयं में अपने आप में ही मिथ्यात्व है। उस करुणा भाव को एक तरफ रखो कि करुणा आएगी तब हम उसे बचाएंगे और करुणा आएगी तब हम उसे सुखी करने का भाव करेंगे, वो एक तरफ भी रखे रहे तो भी एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, सुख दुख देने वाला नहीं है। इस पर तो पूरा जैन दर्शन अवलंबित है, समझ लीजिए अपना मिशन उस पर ही अवलंबित है ना, वो जो जैन दर्शन की मूल धारा है। और पवित्र हृदय से कहें हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन तो इस पर ही समर्पित हुआ है। ये चीजें हमारे ख्याल में नहीं थी, पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई, इसलिए गुरुदेव श्री की महिमा है। महिमा तो वास्तव में इन चीजों की है ना। वो भले ही एक क्रमबद्ध पर्याय की वजह से एक विकल्प बना हो और उस वक्त बात हो गई हो, लेकिन बाद में तो अध्ययन में ये सब चीजें आई ना, जो एकदम जैन दर्शन का असली मुद्दे की चीज है। इसलिए इस पर विचार करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना अच्छा नहीं है। जब हमने किताब में लिखा है, इस अनुशीलन में लिखा है और टीका में भी दिया है, तो उन पर यहां विचार होना ही चाहिए। पढ़ो ये कलश।
मान मरण जी जीवित दुख सौख्यम अज्ञान नेत दधिगम परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कल्मान्यहं प्रतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्याद्रशो नियतमात्महनो भवन्ति जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है करे कोई किसी के जीवन मरण अर दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञान में इस बात को कर तत्व रस से लवालब है अहंकारी वे पुरुष भव भव भ्रमे मिथ्यामति अरे आत्मघाती वे पुरुष।
ये जो छंद है ये अपने घर में ऐसे लिखाने लायक है, ऐसे अपन ने ये लिखा है ना, ऐसे इनको भी यहीं कहीं लिखाना चाहिए। संस्कृत का आप कहोगे संस्कृत का क्यों, वो तो किसी की समझ में नहीं आएगा ना। नवोकार मंत्र लिखाओगे तो क्या कौन सा लिखाओगे, तो प्राकृत भाषा का है नवो अहंताणम वो लिखाओगे कि कोई ने हिंदी अनुवाद कर दिया होगा है? वो लिखाओगे क्या करो है? इसलिए संस्कृत का कि लोग पूछें कि ये क्या है, ये क्यों लिखा है, क्या चीज है ऐसी, यहां संस्कृत में ऐसी क्यों लिखी है। आप उसे जवाब दें कि ये नवोकार महामंत्र से भी बड़ा मंत्र है। नवोकार मंत्र भी आचार्य भूतवरी पशुदंत ने उसे मंगलाचरण में लिखा है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि एकदम वो अनादि से चला आ रहा और ऐसा है, ये भी अनादि से ही चला आ रहा, ये मान्यता अनादि की नहीं है, वो अनंत काल तक नहीं रहेगी। मतलब मैं नवोकार मंत्र की महिमा कम नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी महिमा बढ़ाना चाहता हूं। क्या मैं नवोकार मंत्र की बराबरी पे खड़ी करके उसे नीचे नहीं लाना चाहता हूं, मैं इन्हें वहां उनकी बराबरी पे खड़ा करना चाहता हूं। फिर लोग पूछें कि ये क्या है, आपने ये क्यों लिखाया, तो फिर आप बताएं, भले फिर हिंदी का लिखा दें बगल में कि साहब इसका ये है, ये इसी का है, लेकिन वो ये हिंदी से नहीं चलेगा, ये समाज में प्रवेश नहीं कर पाएगा हिंदी से, इसे संस्कृत प्राकृत से ही समाज में प्रवेश कराना पड़ेगा। इन सिद्धांतों को वे गाथाएं भी हमको बोलनी पड़ेंगी प्राकृत से कि ये उससे है, इसलिए ये बात कहता हूं मैं। दूसरी बात, इसमें बहुत मार्मिक बातें हैं, जैन दर्शन की असली बात ही है। देखो इसके साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या होता है कि लोग कहते देखो साहब कितना क्लियर लिखा है, कर्मोदयात मरण जीवन सुख दुखम, जीवन मरण और सुख दुख कर्म के उदय से होता है, लिखा तो है। देखो अमृतन संस्कृत देखो पढ़ो, और हिंदी में भी हमने अनुवाद यही किया है, जीवन मरण अरु दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से लिखा। ये उसका अर्थ संस्कृत का, हिंदी में अर्थ है। वो समझते हैं कि ये निमित्त का प्रधानता वाला छंद है जो निमित्त को कर्ता बताता है क्या। लेकिन ये बात नहीं लिखो, ये तो क्रमद पर्याय का सूचक है। पांचालखान सर्वम माने सबका, सदैव माने हमेशा, काल ये कालवाची है, फिर नियतम माने सुनिश्चित होना ये भाववाची है, और भवती सब पदार्थ सदा ही सुनिश्चित होते हैं, माने सब पदार्थ माने सब पर्याय हमेशा जब जिसको होना है वो बिल्कुल द्विविच्छेद काल से बनी हुई सुनिश्चित होती हैं, और जब वे होती हैं तो अब जीव पे अकेली बात लाओ, कर्म के उदय की बात तो सब पे तो घटेगी नहीं, ये तो सबके बारे में कथन है। कौन सा परमात्मा समझ में ना, छह द्रव्यों के बारे में, वो तो अकेला जीव पे ही घटित होगी ना, तो वो आगे सुख दुख और जीवन मरण की बात कही ना, वो भी भाग्य से जीव ही पे घटित होती है ना, तो सुख दुख और जीवन मरण पुद्गल पे घटित नहीं होते, आकाश पे घटित नहीं होते, धर्म अधर्म द्रव्य की बात नहीं है। तो ये जो चार चीजें हैं इनमें जब जिस कर्म का जैसा उदय होना सुनिश्चित है वो भी नियम से होगा ही, उन नियम को भी उल्लेख कर दिया उनने। कौन सा निमित्त का है कि निमित्त की उपस्थिति भी गारंटी से होगी ही, और हमें कहते हैं नहीं नहीं वो कर्म का उदय जैसा आएगा जैसा जीव को प्रणमना पड़ेगा, यदि अपनी यदि पराधीन भाषा आती है। अब मैं ये कहता हूं कि एक एक समय का क्या क्या होना है जीव का वो नक्की है, अब कर्म को कर्मान वर्णा को जीव का जब जैसा होना है उसके अनुसार बंधना पड़ेगा, उसके अनुसार उदय में आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नक्की है ना। संत जी समझ में है ना, बस इतनी सी बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि हम उल्टा दे पकड़ना सीखें, दोनों का निमित्त निमित्त एक संबंध है ना, तो वो वहां से ही भी है ना। यदि ये नक्की है कि भगवान महावीर से अपन पूछें कि हमारा मृत्यु कब होगी, जो ये बता सकते थे कि नहीं, तो वो ये देख के बता देते कि भाई इनका ये आयु जब तो आयु कर्म बना ही नहीं होगा हमारा, आज नाथ पे चलो तो उस वक्त तो गारंटी से नहीं बना होगा ना, तो कोई कर्म कर्म को देख के तो नहीं बताते, इसका मतलब वो वासाब नक्की है। तो जीवन मरण नक्की है, तो मरण में तो एक पॉइंट हमें दिखाई देता है, जब हम इस देह को छोड़कर दूसरी देह में जाएंगे ना, तो वो बात हमारे ख्याल में आती है कि वो नक्की है कि हम वो फला तारीख को मरेंगे, फिर वो तो हम मान लेते हैं। लेकिन जीवन कहकर कि प्रति समय की हर पर्याय नक्की है, ये भी आ गई ना जीवन में, और दुख और सुख जिस समय जो होना है, अब ये सब पहले से नक्की है और आदिनाथ ने जान लिए हैं, तो वो कर्म का और कर्म के उदय के बिना होंगे नहीं, तो अब तो कर्म की अब कर्म को नया बंधना है, अब कर्म की तरफ से देखेंगे तभी कहेंगे कर्म भी तो जान लिए थे ऐसे बनेंगे, ऐसे उदय में आएंगे, ऐसे सत्ता में आएंगे, भी उस व्यवस्था के बाहर थोड़ी है। भगवान ने यदि ये व्यवस्था जानी है और उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है तो इस व्यवस्था के साथ वो भी जुड़ी हुई है। हमें भगवान ने हमें ये तो देखा है कि हम 80 वर्ष की उम्र में मर जाएंगे और हमें एक ट्रक के नीचे आके मर जाएंगे, एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे, अब वो ट्रक कौन सा होगा अभी ये नक्की नहीं है, वो नहीं देखा होगा उनने, वो ट्रक का नंबर क्या होगा वो नहीं देखा होगा उनने, उस ट्रक का ड्राइवर कौन होगा वो नहीं देखा होगा उनने, अरे ने सब देखा, हमारी समझ में आता ही नहीं इसका अर्थ, पर हम जो बात ये कहते हैं ये को मान लेते हो, बाकी से अपने को अनिश्चय मान लेते हो, आप कौन समझे कि नहीं समझे। तो वो कह रहे सर्वम सदैव और नियतम भवती, अभी ये बात पहले नक्की कर लूंगा खत्म, अभी कर्मोदय बाद में देखेंगे, क्योंकि एक अमेंस छह द्रव्यों के प्रति है, और फिर जीवन मरण और सुख दुख का विशेषण है कर्मोदयाद। ठीक है कि नहीं? संस्कृत में देखो है ना। अब ये कहते हैं कि सबका सब संसारी जीवों का ऐसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध जीवों के सुख दुख जीवन मरण नहीं है, तो सब संसारी जीवों ने पूरे जीवों का नहीं, सब संसारी जीवों का जीवन मरण और सुख दुख ये भी सर्वम में आ गया है ना। और ये नियतम भवती सुनिश्चित होता है तो कर्म का उदय, कर्म के उदय से होता है तो कर्म का उदय भी सुनिश्चित होता है। वो क्या समझते हैं कि सबका सुनिश्चित होता नियतम भवती पे तो जोर देता नहीं है, क्रिया है, और कर्मोदयात मरण जीवन सब जोखिम का अर्थ करता है, लेकिन उसमें तो क्रिया है ही नहीं, अकेला इतना ही कह गए रह गए ना, जीवन मरण सुख दुख कर्म के उदय से, बस कह दो क्रिया कहां है? क्रिया तो भवती है ना, आप समझते हो ना, सब संस्कृत व्याकरण समझते हो, 90% आप ही लोग हो इसलिए मैं उस दृष्टि से पढ़ा रहा हूं है ना। भवती भवती क्रिया है, तो क्या भवती? नियतम भवती, नियतम भवती वाला वाक्य है ये पंक्ति, कर्म के उदय से होता है, होता है अभी तरह से लगा दिया, वो तो नियतम के साथ है, अर्थ समझे? देखो इसका अनुवाद जब किया जाता है, ये बात मुझे ध्यान में थी, जीवन मरण और सुख दुख सब प्राणियों के सदा ही, प्राणी जानते किसे बोलते हैं? क्यों? जिसके 10 प्राण हों, जिसके 4 कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्राण हों, उन्हें बोलते हैं प्राणी, और वे संसारी जीवों के ही होते हैं, सिद्ध जीवों के नहीं होते हैं? 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, 3 बल, आयु और स्वास्थ्य, उस बात ये 10 ही प्राण प्राणियों के होते, इसलिए हमको प्राणी बोलते हैं, प्राणी इसलिए बोलते हैं इन प्राणों की वजह से, प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हों नियम से। देखो मेरे कहने का मतलब, हमने इस अनुवाद में हमारा पक्ष ये है कि निमित्त पर वजन नहीं देना दुनिया मानती है, हम तो नहीं मानते, हम तो मानते सत्य पक्ष है हमारा, लेकिन हमने इसमें कोई कंजूसी नहीं की कि उनने यदि कर्मोदयात लिखा है तो उसका जो सही अनुवाद है वो पूरा डाला है उसमें क्या? तरे कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख, बहुत स्पष्ट है, सरल भाषा है, करे कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख, ये जो 4 चीजें गिनाई ना, वो 4 चीजों में अनंत जानना कि जीवन और मरण, तो अब क्या रह गया? अब जीवन में रोटी खाना, फिर उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर पानी पीना, ये सब आ जाएगा ना क्या? उन्होंने 4 चीजें ऐसी पकड़ी कि जिनमें अनंत चीजें आ जाएं, और जिनका तुम्हें निरंतर करने का विकल्प बना रहता है, वो विविध करे कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख, ये चारों कोई किसी दूसरे के करे, विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है, अनेक भूलों से भरी हुई मान्यता है। देखो संस्कृत में लिखा है, अज्ञान मेतद यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित सौख्य दुखों, कोई मनुष्य दूसरे के जीवन में सुख करता है इति अज्ञानम एतद, ये अज्ञान है, ये मतलब सही बात नहीं है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि किसी पर दया हम नहीं कर सकते क्या? ये कह रहे अज्ञान भरी मान्यता है, वो तो ये बता रहे, हम क्या करें? वो दया आ गई हमें तो क्या करें? फिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बता रहे हैं कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ नक्की है, हमें करना चाहिए। तो ये तेरा प्रश्न कहां से उठ रहा है, तेरी नाभि में क्या है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? हम कह रहे वो सब नक्की है, सब कह रहे साहब आपने कहा हमसे कि शिविर है तो शिविर का कार्यक्रम बनाना है। शांति जी आए तो दादा सारे कार्यक्रम बनाना है, मैं बना लिया, बना लिया नहीं तो फिर मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है आप ये बता दो। लेकिन मैं कह रहा हूं ना बना लिया है ना, लेकिन मुझे बनाना कि नहीं बनाना, बहुत आज्ञाकारी है ना। अरे हम कह रहे हैं सब नक्की है कि हमने नहीं बनाया हो तो क्या बनाना है, हर साल तो होता है ना, इसी तिथि में होता है, दशहरा बीच में आता है, ऐसा ही मौसम होता है, वैसे ही कार्यक्रम होते हैं, वैसे ही दिनचर्या होती है, उस दिन उसी उतना ही बजे सूर्य उगेगा, उतना ही बजे अस्त होगा, क्या बनाना है बोलिए? वो कागज पे लिखना बनाना है क्या है? कागज पे लिखना बनाना हो तो कुछ टाइप करता है फिर वो हो गया बनाने वाला, हम थोड़ी बनाने वाले होंगे। अरे ना हम हैं ना वो है, वो तो बना बनाया है, अब अपन कहते ना उसे भी बोलते बना कर लेंगे मतलब क्या एक हाथ जो पंडित का नाम बदलना होगा, किसी का कोई विषय का नाम बदलना, बदलने की जो चीज होगी एक आध उसी की बात है, बाकी क्या है 90% तो बने हुआ है ना। ये 48 वर्ष से लैन बनी हुई है परमात्मा, अब तुम्हें क्या करना है, क्या करना बोलो? कुछ नहीं, सब बना हुआ है, पर एक दफे रिपीट करना है, चलानी है गाड़ी, बस कुछ गाड़ी तो चलनी ही है, पर खड़े हो जाना है। समझ गए, हम करता हो जाएंगे कि हमने चलाया शिविर, क्या कहलाते हो तो अपन क्या कहते हैं, चलाने के शिविर का जो निर्देशक, निर्देशक माने जीरो, क्या करना है कदम, जो काम चल रहा है उस चलते काम में खड़े हो जाना है। देखो अपने कर्म के जो हो गया एक विविध भूलों से भरी है मान्यता अज्ञान है, कितना स्पष्ट है, ये बिल्कुल अर्थ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही शांति से बोलते जाओ ना ख्याल में ना तो ही सारा अर्थ समझ में आता है। ये अपने दैनिक प्रार्थनाओं की चीजों में रखने लायक चीजें नहीं है, ऐसी अपन चुन के नहीं बना सकते। आप एक गांव में बोलो एक दिन अर्थ समझा दो और फिर रोजाना बोलो, सबकी बात रिपीट होती, सबकी समझ में आती जाएगी और उसके दिमाग में 24 घंटे में एक दफे ये बात रिपीट होगी, बस कुछ दिनों में उसका मान्यता के अंदर घुस जाएगी, ऐसे नहीं घुसेगी। अब जब तुम साल दो साल में एक आध दफे व्याख्यान करोगे उसमें दो चार बेवकूफ बीच में आकर के वो प्रश्न खड़े करेंगे उल्टे सीधे, ऐसा कैसे हो सकता, फिर तो दया खत्म ही हो जाएगी, फिर संतों को भी दया होती है, ज्ञानियों को भी दया होती है, फिर ऐसा कर करा करके उस विषय को फीका कर देंगे, उसमें प्रश्न बातें खड़ा कर देंगे और तो कुछ बस की है नहीं उनके। वे जो समझते हैं तत्व उसको प्रतिपादन करके किसी के गले उतार दें ये तो बस की है नहीं है? आप उतार रहे हो तो उसको मैं प्रश्न वैसे खड़े कर देंगे, ये फिर कुछ करने की जरूरत, एक दफे शांति से बैठ के अर्थ कर दिया जो उसकी समझ में आ गया, कभी पूछ लिया भाई बोलो तुम बोलो किससे किसके लिए कह रहा हूं, मां से, बाप से, भाई से, भाभी से, बहन से, बहनोई को, सबको कह रहा हूं मैं, क्योंकि असली हमारे हित से यही है ना, तो हमें इनका हित करने की भावना होनी चाहिए कि नहीं? आप जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पिताजी ने हमें शास्त्री बना दिया और हम काम करने लगे, कुछ नहीं हमें आपको हम बताएं ना दी कि हमको क्या मिलता था, तो तुम हंसोगे, भरोसा ही नहीं हुआ। 70 रुपया महीना, 100 रुपया महीना, समझे ना। उस स्थितियों में हमने अपने मां बाप से कहा कि आप गांव छोड़ दोगे, अब कोई काम नहीं करोगे। दादा बैठे हैं सामने साक्षी में, है ना, कोई काम नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हम हमारे साथ चलो तो क्या करेंगे हम वहां जाके। तुमने हमें पढ़ाया है ना, कि हाँ अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तुमने हमें धर्म क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया ना कि आत्मा का कल्याण करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे। और हमने उन्हें पढ़ाया, पत्नियों को पढ़ाया, मां को पढ़ाया, बाप को पढ़ाया, परीक्षाएं दिलाई सबसे, जैसे तुमने बोर्ड की समझ में आई ना, ये सब किया। क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमारे पिताजी ने 5-7 साल पढ़ के हमसे पढ़ के शास्त्री किया, कितने 65 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम समाधि तो अच्छी हुई। क्यों कि खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, जो हम खाएंगे वो तुम खाना, दो रोटियां मिलेंगी तो एक तुम खाना एक हम खाएंगे, तुम्हारा भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा हमारा भी रहेगा, दोनों पे चर्बी नहीं चढ़ेगी। मैं सच्ची बात कहता हूं, अपने मां बाप को पढ़ाना चाहिए, उनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है, उसका बदला तुम उनको सोने का में रख करके और बढ़िया माल हलवा पूरी खिला करके नहीं चुका सकते। उसका बदला ये जो असली चीज है ये सिखाकर चुका सकते, चुकाना चाहिए। मैं बिल्कुल अपना समझ के तुमसे बात कर रहा हूं, ये और जो मैंने किया वो तुमसे कर, दादा भी हमारे साथ ही शामिल है, मैंने माने हमने क्या ये सब देखो। करे कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख सुख, अब कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख करे, मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को, बोलो किसको नहीं आया इसका अर्थ समझ में, नहीं आया हो तो हाथ उठा, जो बिना पढ़ा लिखा है उसकी भी समझ में आया होगा। कर्तृत्व, अब देखो ये लेन है, कर्तृत्व रस के से लवा लव हैं अहंकारी वे पुरुष, भव भव भ्रमे मिथ्या मति और आत्मघाती वे पुरुष। क्या लिखा, वे कर्तृत्व मैं करूं इस रस से लवालब भरे हुए हैं, थोड़ा वो खाली करना है। कर्तृत्व रस से लवालब, मैं इसे बचाऊं मैं इसे मारूं, है ना, ये दया के परिणाम नहीं है, ये क्रूरता के परिणाम है। एक वो क्या है, करुणा भाव और करुणा का अभाव, दोनों आ गए ना, दया और क्रूरता, ये दोनों ही में इससे इस लब से मैं भरा भर लबालब, लबालब समझते हो, तुम बुंदेलखंडी नहीं समझते हो, कहां के हो, महाराष्ट्र के हो। ये जब कोई चीज भरी होती है ना ऊपर से, एक भी बूंद नहीं डाल सके, फिर इतनी खाली नहीं हो लबालब। और वे अहंकारी पुरुष हैं, मैंने किया हूं करूं ये अज्ञानता, सकट का भार जो स्वान ताने, है ना, भव भव भ्रमे, ये सारे दुनिया भर में घूमेंगे, मिथ्या मति और आत्मघ्याति वे पुरुष, वे आत्महत्यारे हैं। बोलो ये कह रहा है, हमें तो नेताजी देखो कि तुम कह रहे हो तुम्हें जेल में डालेंगे, नहीं नहीं आचार्य देखो ऊपर, मिथ्या दिशो नियत आत्महनो भवंती, वे मिथ्या दृष्टि नियत माने निश्चय से आत्मा की हत्या करने वाले हैं। करो दावा इन पे, अब मजिस्ट्रेट पे तुम विरोध कर रहे, करो इसका विरोध करो, वे कह रहे तुम्हें आत्महत्या है, कौन कौन लोग, अभी कहूंगा तो विरोध खड़ा हो जाएगा, ये करुणा वाले करुणा के प्रति जिनके हृदय में कोमल परिणाम है वो कर ही नहीं सकते उस काम को करने के लिए कि धर्म कह रहे कैसी असंभव बात है बोलो, या तो ये बात गलत है। मैंने कहा नहीं, रोज आना लगाकर पढ़ने लायक चीजें हैं जी, एक जे कलश है, एक वे कलश रोजिना तुम बोलते हो ना, अंत में आता है कौन सी, जब पर न मन की शक्ति तब तक बाहर रहेंगे तो ये दुखी है। जीव की भी बताओ ना, ये पुद्गली की क्यों बता रहे हैं। तुम सवेरे से पढ़ते हो ना यहाँ, कब टेप शुरू होता है ना, प्रवचन शुरू होता है टीवी पे, उसके एक दो मिनट पहले ही आते हैं ये छंद, मेरा एक तोला खून बढ़ जाता है सुनता हूं तो, वहां इतना आनंद मुझे आता। ये कलश है ना कलश, और कलशों का जो पद्यानुवाद है वो मुझे बहुत ही पसंद है। यदि 24 घंटा तुम सुनाओ ना तो मैं 24 घंटा सुनता रह सकता हूं। क्या ये मेरे बनाए कलश बोल नहीं, मैं मेरा जन्म से ही ये है, बनारसी दास जी का नाटक समय सार के थे ना, तो तब मैं आज से करीब 55 साल पहले, 55 समझ गए ना, मतलब 48 साल तो मुझे इधर ही हो गए, उसके 5-7 साल पहले मैं अशोकनगर में था, तो भोपाल में एक शिविर हुआ था, तो उसमें खेमचंद भाई प्रमुख वक्ता थे, उस वक्त मैंने 6 डाला की क्लास ली थी, और ये पवन जी है ना अलीगढ़ वाले, ये मेरी क्लास में बैठे थे, इनके पिताजी भी आए थे वहां, वो भी एक क्लास लेते थे, तो वहां हम ठहरे थे, एक व्यक्ति उज्जैन में था, और सेठ विनोद मील वाले थे ना, मील वाले, तो मील वाली माताजी थी वो 13पंथी थी उनकी पत्नी, और वे सब घर वाले 20पंथी थे, तो उनके लिए उनके ससुर सेठ जी ने एक 13पंथी चैत्यालय मंदिर के अंदर बना दिया था, मील के भीतर, आप लोगों को मालूम है किसी को ये, तो वो सेठानी जी वो भाचन सोनी की बहन थी, वहां रोजाना पूजन करती थी, मैं भी उसमें गया हूं शामिल हुआ हूं, तो एक व्यक्ति उनका पुजारी था, वो उन्हें जो सीतानी जी को ये कराता था, वो नाटक समय सार बहुत अच्छा गाता था, तो मैं उससे घंटों सुनता था राजा, तो उसको ठहरने को जगह नहीं मिल रही थी भोपाल में कहीं भी, तो मारा मारा फिर रहा था, तो मैंने बुलाया उसे, क्या कि तुम्हें क्या है कि जगह नहीं मिल रही मुझे ठहरने की, मैंने कहा एक शर्त है तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूं, अरे कहां, मैंने कहा मेरे कमरे में और कहां, मैं मेरी भी पत्नी भी साथ में थी, शायद बच्चे बच्चे कोई थे या नहीं थे, एक आध होंगे तो होंगे नहीं होंगे तो नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपने कमरे में ठहराया, पर एक ही शर्त है कि जब समय मिलेगा दोपहर में सुबह शाम घंटा 2-3 घंटे मुझे नाटक समय सार सुनाएगा, और मैं वो उसे पढ़वाता था और मैं सुनता था, कितना रस था मुझे, मुझे आज भी वो ख्याल में है, माने जेने कि मैंने कलश बना दिए तो मुझे मेरे बनाए कलश अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, उन कलशों में वो माल है, मुझे संस्कृत के पढ़ो तो भी मुझे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि लगभग मेरी समझ में आता जाता है, एक आप थोड़ा बहुत कहीं अटके, लेकिन आप पढ़ते जाओ, यदि कलश पढ़ोगे तो मेरी समझ में आएगा, है ना? आप समझे ना, मैं तो सबकी समझ में आए इसके लिए आपको हिंदी का पढ़ने के लिए बोलता हूं। लेकिन बहुत मार्मिक चीज है ये, 24 घंटा पाठ करने की चीज है ये, ऐसी है ना। अब देखो, अब मैं पढ़ता हूं इसे, अब इसी का अर्थ है तो समझ में आ ही गया है, नहीं पढ़ूं तो भी काम चल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। एक स्थान पर मैंने पढ़ा था कि श्रीमद रायचंद जी से जब गांधी जी ने पूछा कि कोई किसी को मार रहा हो तो उसे बचाने के लिए तो हम मारने वाले को मार सकते हैं ना। देखो फर्क है, जो तुम उदाहरण से तुम भ्रमित बचो ना, पुराने उदाहरण से काम मत चलाना जो तुमने पहले सुना है, इस पर ध्यान देना, फर्क है। जो पहले सुना है वो क्या है मालूम? कि गान उनने कहा कोई मुझे मार रहा, शांति जी समझ में आ रहा है? इसमें ये नहीं है कोई किसी को मार रहा हो, समझ गए ना, इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं मैं। हाँ, जो तो हमने सुना है ये बोई है, बोई नहीं है, उसी जैसा है। सुनो, देखो क्या लिखा, श्रीमद रायचंद जी से गांधी जी ने पूछा कि कोई किसी को मार रहा हो तो उसे बचाने के लिए हम मारने वाले को मार सकते हैं ना। उसे बचाने के लिए, हम खुद को बचाने के लिए नहीं। क्यों ये यहां ऐसा उदाहरण आपने बदल दिया है, हमने बदल दिया, क्यों बदल दिया? क्योंकि हमें दया को बस समझाना है, यहां करुणा का प्रकरण चल रहा है, खुद को बचाने के लिए करुणा की बात नहीं है उसमें। हम इसे बचाने के लिए इसे मारेंगे तो करुणा होगी हमें इस पे, इसलिए बदला है, समझ गया? वो शेर ने, सुअर ने शेर से लड़ा था, तो शेर महाराज को खा रहा था, तो सुअर आया तो महाराज को बचाने आया ना, तो उसे महाराज पर दया आई थी ना, क्यों क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो भक्ति आई होगी, तो भक्ति नाम की दया आई थी। माने किसी को भक्ति से दया आती है, किसी को वैसे, मतलब वो आदमी पात्र कितना बड़ा अच्छा है जिसे बचाया जा रहा है उस पर निर्भर करता है कि उसे भक्ति नाम देना है कि और कुछ नाम देना है। जैसे अपन कहते हैं ना, गरीब को भोजन कराना, महाराज को आहार देना, वो पंडित जी को, मतलब जैसा सब कहलाता है उद्धा योग्य सम्मान, उसके हिसाब से लगा लेना। पर गाय पर झपटने वाले शेर को मारने में तो कोई पाप नहीं है ना, क्यों? गाय को बचाना है, समझिए, दया की बात चल रही है। इसमें नमक मिर्च भी मेरा हो सकता है, गांधी जी ने गाय वाली बात नहीं भी कही हो, लेकिन आपको स्पष्ट हो इसलिए मैंने किया। गाय पे झपटने वाले शेर को हम गोली से मार दें तो गाय बच सकती है, लेकिन वो शेर को गोली से नहीं मारेंगे तब तक नहीं छोड़ेगा नहीं, वो ऐसी हमारी ताकत नहीं है कि हम शेर को, गाय को बचा लें शेर से, है ना। देखो, झपटने वाले शेर, गाय पर झपटने वाले शेर को मारने में तो कोई पाप नहीं है ना, किसने है? आप तो यह बताइए कि हमें ही मारने लगे तब हम उसे क्या करें। अब अंतिम मुद्दा भी लगा दिया कि अब ना सही करना, अपनी जान तो बचाएं। माने किसी ना किसी तरकीब से गांधी जी जो अहिंसा को मानते थे, उस अहिंसा में उनके चित्त में इसका कोई जवाब नहीं था। लोग उनसे पूछते थे आंदोलन में, तुम कह रहे अहिंसा का लागू करो, कैसे लागू करें, ये सामने हमें मारें और हमें इनको जवाब नहीं दें। गांधी जी को तो ऐसे ही चाहिए थे, वो जानते थे वे गोली मारेंगे तुम्हें तो जवाब नहीं देना, क्यों, काहे के लिए, कि मरने में धर्म था नहीं। वो जानते थे कि यदि गोली को हमने एक पत्थर से जवाब दिया ना तो वो कोई मरेगा नहीं उनमें से, हो सकता किसी को चोट भी नहीं लगे, लेकिन एक गोली चली अब हजार गोलियां चलेंगी, वो एक आदमी जिंदा नहीं जाएगा। बस उन्हें एक ही गोली चलने देना है, आप समझे ना, तो एक ही आदमी की जान देकर और फिर उन्हें अपना आंदोलन चलाना है, समझ गए आप। वो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी, क्योंकि ऐसी शक्ति तो थी नहीं हम में कि उनके तो उनका तो दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, ऐसा राज था, इतनी शक्ति उनके पास थी, और हमारे पास तो कुछ नहीं थी, आंदोलन करने वाले ऐसे साधारण आदमी थे। चंदा लेकर के आंदोलन चलाते थे, तो ये लड़ तो सकते नहीं थे। अब उनको एक पत्थर फेंक के उत्तेजना करके और बस एक गोली की बजाय हजार गोलियां चलवाने के लिए आमंत्रण देना था, क्योंकि फिर सारी दुनिया के अखबार उनका सपोर्ट करेंगे, अपना नहीं। वो दुनिया के अखबार जो हमारा सपोर्ट करेंगे कि उन्हें गोली मार दी तो उन्हें कुछ नहीं किया, दूसरे आदमी ने छाती कर दी, तो तुम लेने के देने पड़ जाएंगे उन्हें। और वो समाचार गया कि हमने पत्थर फेंके यहां से और उनने गोलियां चलाई, तो वो कहेंगे क्या करें, ऐसी हिंसक भीड़ हो तो क्या करें, मरना ही पड़ेगा ना। सारा विश्व ये कहता, समझते आप, समझे ना, आप नहीं समझते हो कि क्या है उसका अर्थ। मैं कोई गांधी जी पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन तो थे ही, वे ही कहते थे, मैंने लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी बहुत बुद्धिमानी पूर्व प्रयोग था, आप समझे ना। एक आदमी को समझ लो, गुरु जी ने शिष्य को चांटा मारा, एक चांटा मारा। अच्छा क्यों मारा गुरु जी, आपने क्यों मारा, अब मारा तो मारा, अब दूसरा मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कब मैं मारूंगा दूसरा, क्या करेगा तू, ले दूसरा जन दिया। मैं कहता हूं कि अब मारा तो कितनी तरह कहेगा बोल, जितनी दफे चैलेंज देगा उतने चाटे खाएगा। अच्छा है कि बिना चैलेंज के यही चला जा, समझ लो ना, होता ना ऐसा। मतलब जो आदमी वो ताकतवर गुंडा होता है, एक आदमी दूसरा गरीब होता है, ऐसा होता है, वो ऐसी करके अब मार के देख, अब मार के देख, वो मारता रहता है, काई को बोलता है, चैलेंज देता है उसे, ये अच्छी बात नहीं है ना। देखो तो अपन कहां पर रहे थे, गांधी जी गाय पर मार जाता। श्रीमद जी एकदम गंभीर हो गए, विशेष आग्रह करने पर उन्होंने उसी गंभीरता के साथ कहा कि आपको ऐसा काम करने को मैं कैसे कह सकता हूं कि जिसके फल में आपको नरक निबोध जाना पड़े और भव भव में भटकना पड़े। क्या कह रहे, आपकी समझ आई कि तुम बदले में उसे मारोगे तो तुम ये मत समझना कि तुमने बदले में मारा तो पाप नहीं लगेगा, कोई हमारे हाथ में है कि पाप नहीं लगना, वो तो संकलेश परिणाम होंगे और संकलेश परिणाम से तो पाप लगते ही है, समझ लेना, बहुत धोखे में मत रहना। संकलेश क्या है, संग हटा दो तो क्लेश, तो वो तो तत्काल ही दुख रूप है। जब भी परिणाम भय है जिसे तुम दया के बोल रहे और एकदम संकलेश हो गया उसमें और तुम लड़ने को तैयार हो गए, तो क्लेश संकलेश माने विशेष प्रकार का क्लेश, तो संकलेश है क्या। देखो मैं ऐसा माफ नहीं होगा, चाहे वो तुम्हें मार रहा हो चाहे वो गाय को, मैं घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। आप याद कहेंगे फिर तो इसका मतलब हम गाय की भी रक्षा नहीं करें, गाय हमारी होता, फिर तुम ये कहोगे तो माँ बाप को मारे तो उसकी भी रक्षा मत करना, यानी इसे तो किसी ना किसी तरीके हमसे गोली मारने की उसे परमिशन चाहिए, हमारे मुंह में हिंसा डालनी है क्या, यानी ये परिस्थितियां झूठी खड़ी करता है वो, हमारे बाप को गोली चला दे, माँ पे गोली चला दे, मैंने कहीं तो तुम पसी जाओ, हमारे धर्मायतन को तोड़े, हमारी मूर्तियां तोड़ने आ जाए तो क्या करें हम, जान की बाजी नहीं लगाना बेटा, जान तुम कहां से, तुम्हें कहां से लाएंगे हम, मूर्ति तो बाजार से दूसरी ले आएंगे, और एक पंच कल्याण और करेंगे, साठ से अच्छी धर्म प्रभाव में हो। लोग कहते पागल है, ऐसा आदमी है, ये समाज में से निकालो। ऐसे के भरोसे समाज की रक्षा कैसे होगी? ऐसे से ही होगी रक्षा। क्यों बोलो, क्या उचित है? वो कहते तुम माफ नहीं होगे, क्रूरता हिंसा, हिंसा के बदले भी हिंसा, ये नहीं चलेगी। आखिरकार अहिंसा से हिंसा को रोकना पड़ेगा, और रुके तो रुके, नहीं रुके तो नहीं रुके। हम हिंसक नहीं बनेंगे। देखो कैसे नरक निबोध में जाने से नहीं बच सकते हो, कैसा वो मार ही देगा फिर हमें। तो मार देगा तो क्या, तुमने जिंदगी 80 वर्ष जी लिए आराम से ठाट से, बढ़िया सड़ी गड़ी जिंदगी ऐसे निकल रही है, चले जाए क्या फर्क पड़ता? अच्छा है, और जल्दी मिल जाएगा अगला भैया, एकदम ये बन शरीर, एकदम ये सब चीजें, ये बन क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जिंदगी खोने की बजाय वो नरक में वो जाने की जिंदगी, अगली अगली जिंदगी का क्यों नहीं सोचते हो? देखो गांधी जी ने कहा, स्वयं को दूसरों को बचाने का भाव तो सुन ही है, श्रीमद बोले बचाने के लिए ही सही, पर मारने के भाव और मारने की क्रिया तो संकलेश परिणामों के बिना संभव नहीं है, और संकलेश परिणामों से तो पाप ही बनता। क्यों बोलो, इसे अपन छोड़ देते आज नहीं करते, कि जब अपन ने कई दफे किया है तो कितनी महत्वपूर्ण बातें छोड़ देते हैं। श्रीमती के उक्त कथन में सब कुछ आ गया है। आप कहते हैं कि करुणा करना तो चाहिए ना, अब क्या होता है प्रमोदम, इससे लोग आगे कहते हैं, वो जो आपने उदाहरण दिया था ना श्रीमद का, गांधी जी का, वो ऐसा नहीं था। कि कैसा था? कि वो उन्होंने गाय की नहीं कही थी, उनने उसकी नहीं कही थी, उन्होंने खुद की कही थी। क्या, अरे तूने हमें क्या बताता है, हमने खुद कह रहे ना, हमने उसमें किया है, नमक मिर्च लगाया है, क्योंकि हमें उनको उनसे क्या लेना देना है, हमें तो एक तत्व समझाना है, जो बात हम समझाना चाहते हैं उसके अनुसार हम उदाहरण को मोड़ेंगे। क्या अब तू इसकी जांच करने लग गया कि गांधी जी ने ऐसा कहा था? मैं कहता हूं ऐसे ही कहा था। बोलो अब वो कहां, टेप हो तो लाओ, टेप तो है नहीं, तो किसका सच्चा है? कि तुमने लिख दिया तो सच्चा, और हम लिख रहे से झूठा, श्रीमद ने तो लिखा नहीं है कहीं। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया आपकी? मैं बस उसमें उलझाएगा, मुफ्त में लेना देना कि नहीं ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। मैं पूछता हूं, हमें तो ये सिद्ध करना है, इसलिए हम वो बात कहेंगे। देखो हाँ सुनो, श्रीमद आ गया है, आप कहते हैं करुणा करना तो चाहिए ना। देखो श्रीमद के उक्त कथन में सब कुछ आ गया है, आप कहते हैं करुणा करना तो चाहिए ना, ऐसे लौट लौट के लौट लौट के, पर अभी आप यह मान चुके हैं कि करुणा भाव दुखरूप भाव है, दुखरूप भाव करने का अर्थ दुखी होना ही है। मैं आपको दुखी होने के लिए कैसे कह सकता हूं, समझ में आया ना? क्या कह रहे वो, क्या पूछता है, करुणा करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, करें हमारे मुंह से कहना चाहता है कि हाँ करुणा करो तुम, तो करुणा क्या चाहिए, करुणा करोगे तो क्या होगा, दुखी होंगे ना, कि दूसरे को दुख को देखकर उसे मेटने के भाव पूर्वक जो दुख होता है उसे करुणा कहते हैं। तुम मेट मार तो सकते ही नहीं हो, तो तुम वो भाव करोगे तो मानो तुम दुखी होगे, तो हम तुमको दुखी होने के लिए कहें, हमसे ये कहलवाना चाहते हो कि तुम ये कहोगे हम दुखी हो, हाँ हाँ बेटा दुखी हो, हाँ बेटा दुखी हो, हम तो नहीं कहेंगे, है ना, समझ गए? हाँ देखो, दुख रूप भाव का अर्थ है दुखी होना ही है, मैं आपको दुखी होने के लिए कैसे कह सकता हूं? हाँ पर अब इतनी बातें गांधी जी ने बताई होंगी कि नहीं बताई होंगी, क्या लेने देना, आप मेरे गांधी ने बताई, मैं भी तो गांधीवादी हूं, मत मानो गांधी की, हुकुम चंद की मान लो, लेकिन बात ऐसे ही है, समझ में आया ना? हाँ पर यह बात एकदम सच्ची और पक्की है कि ज्ञानी जनों के जीवन में अपनी अपनी भूमिका अनुसार करुणा भाव होता अवश्य है, और तदनुसार क्रिया प्रक्रिया भी होती ही है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। ये वस्तु स्वरूप है। प्रश्न, जब करुणा भाव ज्ञानियों के जीवन में होता ही है तो फिर उसे धर्म मानने में क्या आपत्ति है? अरे कैसे 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 होते हैं कृष्ण, आप ऐसा मत करो ना, ये तो मैं ही हूं ये कृष्ण बनाने वाला, भी तुमने थोड़ी बनाए है। लेकिन ऐसे लोग जगत में मिल जाते हैं तो जो ऐसा होगा वो चिन्मय आएगा उसको कहिए हमारी कह रहे हाँ ये कृष्ण तुम्हारे नहीं है, ये तो हमारे ही है। अरे ऐसे प्रश्न करने वाले भी कहां मिलते हैं? देखो कहां पड़ रहे अपन, करुणा भाव ज्ञानियों के जीवन में होता ही है तो फिर उसे धर्म मानने में क्या आपत्ति है? व्यवहार धर्म तो उसे कहते ही हैं, किंतु निश्चय धर्म तो उसे कहते हैं जो मुक्ति का कारण है। ज्ञानियों के जीवन में तो यथायोग अशुभ भाव भी होते हैं, तो क्या उन्हें भी धर्म माने? ज्ञानियों के होते हैं इसलिए रामचंद्र जी ने किया था, इसलिए रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को जंगल में निकाल दिया था, तुम भी निकाल दो अपनी को क्यों? अरे रामचंद्र जी ने निकाल दिया था, धोबी ने तक नहीं मानी उनकी, क्यों? तो गलती करी धोबी ने, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? वो तो बहुत बड़े महापुरुष थे, क्यों? ऐसी घटना अपने साथ घट जाए, कदाचित हमारी पत्नी को दो द्वादश दिन कहीं रहना पड़े, फिर वो अग्नि परीक्षा भी हो जाए, सब हो जाए, ऐसी घटना घट, और फिर भी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी निकाल देना चाहिए, हम ऐसे राम भगत नहीं है क्या? ऐसे राम भगत होने की हम किसी को सलाह भी नहीं देते, हम तो ये समझाते हैं कि भाई उनसे हो गई सो हो गई गलती, अब तुम ऐसी गलती अपने जीवन में मत करना। ज्ञानियों के जीवन में होना अलग बात है और उनमें उपादेय बुद्धि होना अलग बात है, उनमें धर्म बुद्धि होना अलग बात है, समझ गए ना? एक एक शब्द मोती जैसा जड़ा हुआ है, अपनी तरफ से बोलोगे तो बहुत संभल के बोलने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही पढ़ लो। ज्ञानियों के जीवन में भूमिकानुसार जो जो भाव होते हैं वे सभी भाव धर्म तो नहीं हो जाते? हां ज्ञानी जीव जिन भावों को धर्म मानते हैं वे भाव अवश्य ही निश्चय धर्म होते हैं, ठीक है? अरे हो गया वैसे गाथा खत्म हो गया, अब अगली गाथा कल चलेगी अपनी। कौन सी गाथा? स्वाध्याय करना चाहिए। अभी अपन इसके बाद पाठ करेंगे ना, और इसकी बाद की गाथा से शुरू करेंगे। जब तक ये चलेगी ना स्वाध्याय करना चाहिए गाथा, तब तक तो यही करो थोड़ा ना। अब जब ये कथम हो जाएगी फिर अपन उसके आगे चलेंगे ना 87वीं गाथा में, तब 87 से पाठ शुरू करेंगे। और कहां तक करेंगे? 92 तक, 93 तो फिर अगला अध्याय आ जाएगा ना।